نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي القلب مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد کل جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نیکی پر دو چیزیں عطا فرماتے ہیں, ایک تو نور اس نیکی کا اور دوسری اس کے ساتھ برکت. اسی طرح گناہ جو ہے وہ بھی دو چیزوں پر مشتمل ہے, اس کے ساتھ بھی دو چیزیں ہیں, ایک تو ظلمت ہے, ادھر نور ہے ادھر ظلمت. ہر گناہ ایک ظلمت لے کر آتا ہے, اندھیرا لے کر آتا ہے. کتنا ہی چھوٹا ہو دو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نحوست. وہاں برکت ہے یا نحوست ہے؟ نحوست کیا چیز ہے؟ بہت ہی بری چیز ہے بھائی. جہاں نحوست ہوگی وہاں ہر وقت پھر رونا پیٹنا رہتا ہے آدمی کو, میرا کاروبار نہیں چل رہا, پتہ نہیں کیا بات ہے, کسی نے جادو کر دیا شاید, بچوں کا فلاں ہو گیا, پتہ نہیں کیا بات ہے, اللہ کیا ہو گیا پتہ سمجھ نہیں آ رہا, دکان چلتے چلتے پتہ نہیں جی سیل بالکل ختم ہو گئی, اچھے خاصی دکان چلتی تھی, بس جی کماتے بہت ہیں لیکن اس میں برکت ہی نہیں ہوتی, سمجھ نہیں آتا کیا کریں. کیونکہ ہر وقت پریشانیوں نے اس کو گھیرا ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں ہمیں ہے کیا چیز. خود ساختہ علاج تو ہم اس پہ کرتے ہیں, پھر ادھر تو بھاگتے ہیں, پھر فلاں عمل کرا لو, فلاں عمل یہ کر لو, فلاں اس کے پاس چلے جاؤ, جادو ہو گیا ہے, گٹونا ہو گیا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ وجہ جو ہے ساری نحوست ہے انسان کے گناہ کی. جیسے میں عرض کیا تھا کہ نیکی جو ہے وہ نور رکھتی ہے, وہ نور جو ہے وہ انسان کے ساتھ چلتا ہے, مرنے کے بعد بھی نور رہتا ہے نیکی کا. اسی طرح یہ جو گناہ ہے اس کی بھی نحوست چلتی ہے, ظلمت چلتی ہے مرنے کے بعد بھی. اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. کتنے آسانی سے ہم گناہ کر لیتے ہیں, بس زبان ہلانے والی بات ہے, بس تھوڑی زبان ہلانی, ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ کتنا بڑا چیز ایک بن گئی ہے کہ مرنے کے بعد جیسے انسان کی موت, بلکہ موت سے شروع ہوتا ہے کام, جس کے ساتھ یہ اندھیرا اور نفست چپٹی ہوگی گناہ کی, تو اس کے ساتھ بھی بھائی بہت بڑا حشر ہوگا, بڑی سختی سے جان نکالی جاتی ہے اس کی, بہت سختی کے ساتھ, بہت برے حالات میں ہوتا ہے انسان, اور وقت گزر چکا ہوتا ہے. یاد کر لیں سواری پیدنوں تک وہ چیز کو دنیا کی بھی ہٹا سکے اس کو, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, بڑے آسانی سے ہم گناہ کر لیتے ہیں. جیسے نور چلتا ہے قبر میں نیکی کا, یہ نحوست بھی چلتی ہے اندھیرا بھی چلتا ہے, قبر میں خود ہی اندھیرا بن جاتا ہے وہ, ایک تو جب नौसत पहुंचती है, उसके जुल्मात पहुंचते हैं उसके गुनाह उसके साथ, तो कमर तो स्याह भट्टी बन जाती है, उन गुनाहों की नौसत खबर के अंदर होती है, फिर उसके वहां सख्ती शुरू होती है, फिर उसके अजाब शुरू होते हैं। उधर नूर से जब निकलता है आदमी नेकी के साथ, तब कब्र से निकलता है तो उससे रोशन चेहरे होते हैं, चमकदार चेहरे होते हैं कब्रों से जब निकलेंगे लोग। लेकिन जब ये गुनाह तो चिपका है साथ, उसकी नुसतों देना चिपका है इंसान का, याद रखे वो जो है बदहाल में इंसान उठेगा, बहुत बुरे हशर होंगे उसके, हशर के मैदान में उनका मामला क्या होगा, जैसे मैंने कल अर्ज करा था नूर वालों का हाल क्या होगा और जो गुनाह वाले हैं उनका क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। वो नूर जो धकेलता हुआ इंसान को पुरस्कार से निकालता है वो जन्नत में ले जाता है, और ये गुनाह का अंधेरा जो है धकेलता है उसको जहन्नम के आग में डाल देता है। किस्सा खत्म हो जाता है। बस जी हमने थोड़ा सा यही कहा था ना कि हमने किसी के बुरा थोड़े किया, हमने बस चुगली, झूठ, हरामकारी, फ्रॉडबाजी, जहन में ये है कि भाई चलो ये चीज़ हम करें, गुनाह तो छोटा है, हमने नमाज जो पढ़ ली, हमने हज जो कर लिए, इतने किससे छोटे से गुनाह से क्या फ़र्क पड़ता है, सारी सारी रात फाहिश चीज़ें देख रहे हैं, फाहिशात चल रहे हैं, रमज़ान के अंदर भी मामला चल रहा है, कहाँ है रमज़ान रोज़े के अंदर। दिन में हम समझते हैं रोज़गार है, शाम बसी हमारे घरों के अंदर वही फाशी है, वही हरामकारी के काम चल रहे हैं इसी तरीके से। इसी अंदर तो धोखा है, जो नफ्स इंसान को धोखा देता है, ये नफ्स और शैतान के धोखे सारे। लेकिन अल्लाह बड़े करीम है, बड़े रहीम है इंसान पर, बहुत उसकी रहमत जो है उसकी वसत उसकी सरों से ज़्यादा है। मुझे आप ये बताएं एक बात, कौन से इंसान है जिससे गुनाह नहीं खता नहीं हो जाती, क्या हाल होगा इंसान का, चिपक जाएगा। लेकिन उनका कर्म देखें, अल्लाह ताला ने कैसे इंतजाम कर दिया है कि इस गुनाह को अगर बंदा चाहे तो यहीं साफ कर सकता है। अंदाजा लगाएं कितना कर्म है अल्लाह ताला, अगर बंदा चाहे अल्लाह ने वो इंतजाम किया है कि इस गुनाह को यहीं ख़त्म कर दे। बोले सुभान
अल्लाह,
कितना अल्लाह का करम ने बताया। वो कैसे अल्लाह ताला ने ऐसे इंतजाम किया है कि बस तू ऐसा काम कर, तौबा कर ले, गुनाह साफ। कितना करम अल्लाह ताला का होता है। ठंड पड़ जाती है दिल के अंदर अल्लाह की, ठंड पड़ जाती है, वरना पंजे बताएं कि किस तरह इंसान का गुजारा होगा, वो क्या काम करेगा, वो चीज़ हमें इस वक्त नजर नहीं आ रही। बस बंदा तौबा करे, अल्लाह सुबहान तला उस गुनाह को मिटाई देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। हमें एक वाक़ा याद आता है हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह का तौबा पर, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में आप देखें। आपका ज़माना तो एक शख्स आ गया, आगे कहने हज़रत मैंने तौबा करनी है। जैसे मशाइख के पास लोग आते हैं, हम भी गए किसी के पास, आप साथ भी, तो हज़रत के पास पहुँचा, हज़रत हकीम हुकूमत रहमतुल्लाह के पास, तौबा हाँ करेंगे तौबा ज़रूर, लेकिन हमारी एक शर्त है तौबा से पहले। जी फरमाए, मुझे ये बताएं आप क्या करते हैं, क्या काम करते थे। वो तौबा करने आए थे, ये तौबा कभी देखें तरीका कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा जी डाका डालता हूँ। सुभानअल्लाह, क्या तौबा का अंदाज देखें, उस छुपाई नहीं कोई चीज़, अपने आप सबसे बड़ा जाहिर कहता है डाके डालता हूँ, चोर हूँ। चोर तो चोर होता है, चोर तो उससे ही बड़ा होता है, डाकत वाला तो डाका तो मार भी देता है आदमी। तो हजरत ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी तौबा बैत कर लेता हूँ, तौबा कर लेता हूँ। वो तो हकीम उम्मत थे, अब देखें कहते एक शर्त है कि जी फरमाया मैं शर्त पूरी करूँगा। अब ये देख लें तौबा ऐसी होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शर्त है, कहता है जब से तुमने ये काम शुरू किया और जब तक ये करते रहे जितना लोगों का लूट मार तुमने किया, सब कुछ किया, वो एक लिस्ट बनाकर मेरे पास ले आओ तुम, तो हो जाएगी। कहता ठीक है हजरत। वो गया, उसने पूरी लिस्ट बनाई कि मैंने ये इतना डाका डाला, इतना माल कमाया, इतना बना बना बना, हाजिर हो गया अपने शेख के पास के बाद दो तीन दिन के बाद। कहते हजरत ये मैं ले आया हूँ लिस्ट, आपने लिस्ट देखी। कहता ठीक है, अब दूसरा काम ये करना है तुमने कि हर इंसान के पास जाओ जिसका तुमने जितना इतना माल लिया है, और दो चीज़ें उसके सामने पेश करो। उसको कहो कि भाई वो जो डोरी चोरी हुई थी, तेरा डाका पड़ा था, वो मैं था, मैं तेरे सामने हूँ, और मैं अब अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ। दो चीज़ें तेरे सामने लेकर आया हूँ, या तो अल्लाह की खातिर तू मुझे माफ़ करवा दे तो इसका अजर अल्लाह रोज़े क़यामत में तुझे बेइंतहा देंगे, इसका अजर तो बहुत बड़ा होगा तेरे लिए, एक तेरे लिए दरवाज़ा खुल रहा है जन्नत का। आप ये बताएं जरा हकीम उम्मत को देखें कितना बड़ा दरवाज़ा तौबा का खुला है। सुबहानअल्लाह, कैसे सीखते कि कहाँ तक बख्शिश हो रही है, यानी उस चोर के जरिए सब, उस चोर डाकू ही नहीं बख्शा जा रहा, उसके कुर्बान जाऊँ ये कितनी दूर तक तौबा के दरवाजे खोल दिए। और दूसरी आप चीज़ देखें, उसने जाके जब कहा तो हर आदमी, हाँ दूसरी शर्त ये, एक तो ये कि तुम मुझे अल्लाह की खातिर माफ़ कर दो, इसका अजर तो तुम देखो जो कुरान हदीस होता है वो तुम्हें पास लफ्ज नहीं है, तुम्हें तुम्हारा तो माशाल्लाह काम बन गया मेरी वजह से अगर माफ़ करते हो। दूसरी चीज़ यह है कि भाई तामुल है, तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहते, तो दूसरी चीज़ मैं मकरूज़ हूँ आप तुम्हारा, ये मैं खुद बता रहा हूँ कि इतना माल तुम्हारा देना है, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा ज़िंदगी में तुम्हारे माल को उतार दूँ, उतार दूँगा ज़िंदगी में जहाँ तक उतार सकूँ। यही शरीत व तकाज़ा है, अब तुम्हारे चॉइस है, या तो आख़िरत ले लो और ऊँचे मुकाम ले लो क़यामत में, या तुम फिर मुझे मकरूज रहने दो, मैं तुम्हें उतार दूँगा। किसी आदमी ने भी, और हजरत ने कोई फरमाया था कि लिखवा के लाना है उनसे कि मैंने माफ़ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, तुम्हें ये लिखवा के लाना है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दी, या मैं तुम्हारे से पैसे लूँगा, तुम्हारा कर्जा है तुम्हारे साथ। दो चीज़ों में से एक चीज़ लिखा लाओ। जब उसने लिस्ट दी तो कमाल देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम जितने भी थे सब ने अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दिया। और उसमें कमाल देखें, एक हिंदू था, हिंदू के पास में डाका डरा, उसके पास भी गए तो उसने भी ये लिखा कि अल्लाह की खातिर मैंने इसको माफ़ किया। यहाँ पर हकीम कहते हैं कि जब अब खुद सोचो कि इंसान जब कदम उठाता है अल्लाह की तरफ बढ़ने का, तो अल्लाह सुबहाना ताला की मदद देखो कितनी हो जाती है, कि किसी इंसान ने भी, यानी कितना मुश्किल काम है, क्या ख्यालात उसके जहन में आ सकते हैं कि यार मैं जाऊंगा तो वो तो मुझे पकड़ लेगा, वो तो मुझे मारेगा, तू ही मेरा चोर है। और यकीनन यही बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपके डाकू किसी ने डाला होगा, चोरी डाला होगा, आपके सामने खड़ा हो जाके, तो आप तो नहीं ना तौबा करने जा रहे, आप तो नहीं ना कोई नेक होने जा रहे, वो तो फिर एक बहुत बड़ा मामला बन सकता है, वो तो कहेगा पुलिस के पास चला, पकड़ाता हूँ तुम्हें, पकड़े गए तुम, कितना बड़ा हाई रिस्क और कितने काबिल और कितने बुलंद शेख थे वो अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो जानते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की मदद, कितना यकीन था कि अल्लाह की मदद ऐसी आएगी कि इसको हर मराहिल से निकाल देगी। मतलब चोर तो पकड़ा गया, वो तो पुलिस को फ़ोन करता और वो तो कहता है हजरत आपने मरवा दिया मुझे, कुर्बान जाऊँ। सुभान अल्लाह, उनकी यानी आप देखें क्या रोशन ज़मीर लोग थे वो, कि उन्होंने कितना बड़ा काम उसको दिया, उस गया उसने भी ख़तरा नहीं किया कि मुझे पुलिस पकड़ ले या मुझे वो मारे या मुझे जो कुछ भी करे, लेकिन मैंने जो है जाके आज यहीं से नुकसान होगा ना, उधर से मैं बच जाऊँगा, क्योंकि जो गुनाह मैंने किए हैं यकीन था उसको कि मेरी मौत आएगी, मेरा कब्र पे होगा। तो हजरत के पास पहुँचा, हजरत ने उसको बैत किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप खुद सोचें कि उसकी तौबा कैसी तौबा होगी, उसकी अपने शेख से कैसे फैज़ हासिल उसने किए होंगे और कैसी उसने आखिरत संवारी होगी मेरे भाई। तो ये तो एक ऐसी बात है कि जिसको अल्लाह तौफीक दे दे तौबा की, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज। और जिसको अल्लाह तौफीक दें इस काम की भी और वो उसकी कदर ना करे, आप ये देखें कितना बड़ा नुकसान होगा उस शख्स को, डबल ट्रबल सजा मिलेगी। वो किसी शेख के पास गया भी हो, देखें अब तरीका कैसा है तौबा करने का। तौबा एक ऐसी चीज है कि उसमें ड्रामे नहीं चलते, ये अल्लाह के बंदे का मामला है। बहुत बड़ी जेल से छूट रहा है वो, या ये जेल नहीं है, कितनी बड़ी आंख से छुटकारा हो रहा है, कहां से अल्लाह पाक को छुटी। तो अल्लाह का करम है, उसका सबसे बड़ा फजल है कि तौबा की तौफीक नसीब फरमा रहा है, किसी अल्लाह वाले के पास भेज रहा है। आप ये तो सोचें कि हम तो इसी के सामने सारी जिंदगी उतार सकते। एक शख्स है 80 साल के थे, बेनतार हो हजरत के पास गिरियतारी, तो रोते रोते कहने के हजरत मेरी जिंदगी का तो कुछ पता नहीं, बहुत सोचा कि मैं आपका एहसान कैसे उतारूं। और कसम खा गया कि अगर मेरा सारा ये चमड़ा जो है जिस्म का उतार के इसकी जूती बना दी जाए आपके लिए, तो वो भी कम है कि आपने मुझे अल्लाह का नाम सिखा दिया। ये कदर देखें आप लोग। तो जब तक दिल में इंसान की किसी चीज की कदर ना हो, एहसास ना हो, मोहब्बत ना हो, मेरे भाई काम तो नहीं बनते। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक रमजान है, बहुत बेहतरीन मौका है तौबा का, ऐसी तौबा हमें नसीब फरमा दे अल्लाह ताला, कि गुनाहों का फिर निशान भी ना हो, ख्याल भी ना हो, त्वचा भी ना हो। और अल्लाह की मदद होती है, कभी ना सोचें कि भाई ये तो मैं तो इतना बड़ा मुजरिम हूँ, मैं इतने गुनाह करता हूँ, ये हूँ फला हूँ, बिल्कुल ना सोचे आती। यकीनन मदद आती है अल्लाह सुबहान तआला की, उसको बचाती है, चाहे कितने गुनाह किए हों, आसमान तक भी गुनाह लग गए हों, लेकिन नीयतों पर आगा के उसने तौबा की। क्या अजीब मिसाल है तौबा की, आप ये देखें, बहुत कम जमाने में ऐसी मिलती है तौबा, लेकिन अल्लाह तआला कैसी मदद फरमाते हैं इनके साथ। अल्लाह पाक मुझे भी तौबा की तौबा नसीब फरमाए। इस रमज़ान में अगर तौबा हो जाए तो और क्या चाहिए हमें, की तो है तौबा, लेकिन जरा फिर दफा उसकी तरफ नज़र कर लें, अपनी तौबाओं की तरफ हम, कि भाई क्या क्या हमारी तौबाओं में कमी है, अल्लाह ने कितना कलम भेजा है, आखिरी दरवाजे तक पहुंचा दिया, अब इसके बाद तो कोई दरवाजा नहीं। हजार करोड़ों लोग ऐसे हैं, अरबों लोग जिन्हें तौबा का पता ही नहीं, किसी शेख का ही नहीं पता, किसी खानकाह का ही नहीं पता, किसी शेख का नाम ही नहीं पता। अगर नाम आ भी जाए तो धतकारते हैं, बुरा समझते हैं, क्या है जी, क्या काम कर रहे हैं, कैसे। इन तमाम वसाविस से निकाल के मुझे और आपको अल्लाह पाक ने इतना कलम किया, इतना रहम किया कि उस आखिरी दरवाजे तक पहुँचा दी जिस पर दुनिया नहीं पहुँच सकती, कि किसी शेख के सामने बिठा दिया, तौबा करा दी, अल्लाह का नाम सिखा दिया, और फिर भी हम उस पर कायम ना रहें, उसकी कदर ना करें, उसका शुक्र ना करें अल्लाह ताला का, मुझे बताएं फिर तो कोई हशर नहीं इंसान का। अल्लाह पाक से माफ़ी मांग। मेरे भाई मौत बड़ी सख्त चीज़ है और इतनी जल्दी आने वाली चीज़ है, कोई भरोसा नहीं कि मैं उठ भी सकूँ यहाँ से, ना उठ सकूँ, चल भी सकूँ ना चल सकूँ, प्लान तो बड़े बड़े इंसान का। बस अल्लाह पाक हमें इस तौबा कायम फरमाए।